के 7-8 लोग परम पूज्य चैत्य जी महाराज साहब की सोहबत में आई। उनके प्रोफेसर राजेंद्र नाथ जी स्वयं लाला जी महाराज साहब के शिष्य लेकिन जब कानपुर में चाचा जी महाराज साहब ने निवास किया तब उनके पास भी आने जाने लगे और समय लाला जी महाराज साहब के विश्राम के बाद जनरली जो भी लोग गए वो सब चाचा जी महाराज साहब के पास गए। उन्हीं में से एक पूज्य हरनारायण चाचा जी भी थे। आप परम पूज्य लाला जी महाराज साहब से दीक्षित थे जैसा आप स्वयं बताते थे और बाद में लेकिन आपकी तालीम से लेकर हर चीज चाचा जी महाराज साहब से थी। बाद में आप लाला जी महाराज साहब के रिश्तेदार भी हो गए और दिनेश जी उनको फूफा कहते थे। उसके बाद आप जयपुर में जाके सेटल हो गए। लाला जी महाराज साहब के विशाल चाचा जी महाराज साहब के विशाल के बाद कुछ दिन आप धीरे धीरे सत्संग में कम रुचि लेने लगे लेकिन फतेहगढ़ के भंडारे में हमेशा आते रहे। जब कोई चीज चली जाती है तो आदमी का स्वभाव है कि उसी की लिए तलाश करता है। और या तो सौभाग्यवश किसी को अच्छी सोबत मिल जाए और सेंस मिल जाए हो जाए तो वो लोग उस वक्त के किसी बुजुर्ग से कनेक्ट हो जाते हैं, अदरवाइज ज्यादातर लोग बेरहा हो जाते हैं। तो सौभाग्यवश क्योंकि आप चाचा जी महाराज से कनेक्टेड थे लिहाजा जुड़े रहे उनके विशाल के लाला जी महाराज साहब के विशाल के बाद भी आप फतेहगढ़ के भंडारे पर। फिर जब चाचा जी महाराज साहब का विशाल हो गया 1948 से कुछ दिन का ऐसा पीरियड रहा कि जिसमें आपकी समझ में ये नहीं आया कहाँ जाए। तो जहां भी उनकी इच्छा करती थी चले जाते थे लेकिन संतुष्ट कहीं नहीं हुए। बस एक चीज उनने कायम रखी कि फतेहगढ़ का भंडारा जहां तक हमारा होश है उनने ऐसा कभी नहीं हुआ कि ना आए। और बुजुर्गों की दया और ईश्वर की इनके लड़के की नौकरी दिल्ली में लग गई और उस वक्त से 1960 से आपका संपर्क परम पूज्य भाव जी महाराज से, आप हमेशा भंडारी में आए हैं, पिछले भंडारी में भी आपने देखा होगा आप तशरीफ लाए थे, फिर यहाँ का भंडारा उनने कभी नहीं छोड़ा और हमेशा, और ज्यादातर जो लिटरेचर और जो किताबें आपने लिखी हैं वो सन 60 के बाद से लिखी, और सत्संग परिवार की बड़ी सेवा की उसमें। परम पूज्य बाबूजी महाराज साहब का भी जो शताब्दी का भाषण है वो आप ही के द्वारा छापा गया था, यादें एक किताब जिसमें उनने परम पूज्य लाला जी महाराज साहब का आपकी उम्र 94 साल बताई जाती है, आखिरी वक्त आपको कोमा हो गया, 5-6 दिन अस्पताल में रहने के बाद जयपुर में आपको स्वर्गवास हो गया। आपके लड़के गुड़गांव में हैं, लिहाजा वो उनकी डेड बॉडी को गुड़गांव ले आए और वहीं उनका दाह संस्कार हुआ और आज के दिन उनकी दे रही, क्योंकि वो परम पूज्य लाला जी महाराज साहब के शिष्यों में से थे, परम पूज्य चाचा जी महाराज बाबू जी महाराज से वास्ता था। तो हमारा भी धर्म बनता है कि हम लोग उनके लिए अपने सिलसिले के बुजुर्ग थे कि उनके लिए आज ओम शांति का जाप करें और प्रार्थना करें कि उनकी आत्मा जहाँ कहीं भी हो सुख और शांति से हो, और उस पर सिलसिले के बुजुर्गों का आशीर्वाद बराबर बना रहे। 5 साल के बाद ये मतलब नेचुरल फिनोमेना है, किसी इसका नहीं। यानी औरों के अलावा 31 लोग ऐसे थे जो दीक्षित लोग थे, जिसकी लिस्ट हमने अपनी आंखों से देखी है बाबूजी के पास। तो हमेशा गुरु की वापसी के बाद वैकुंठ हो जाता है, आदमी सोचता हम कहां जाएं। ये कानून कुदरत है। तो परम पूज्य लाला जी महाराज साहब के विसाल के बाद परम पूज्य ताऊ जी महाराज, बाऊ जी महाराज, एटी वाले डॉक्टर साहब, पेशकार साहब, यानी जो इनर सर्किल के लोग थे, ये सब लोग चाचा जी महाराज साहब की तरफ रह गए और रेगुलर आने जाने लगे। कुछ लोगों ने सोचा गैप हो गया, क्या करें। क्योंकि खाली सत्संग ही मेन चीज है, बिन सत्संग विवेक नहीं होता, और विवेक जब तक नहीं होता तब तक आगे का रास्ता भी नहीं खुलता। और इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न हो। चाहे वो कहीं का हो, धीरे धीरे फिर विवेक होने लगता। तो परम पूज बाबू जी, ताऊ जी महाराज, एटा वाले डॉक्टर साहब, शाहजहांपुर वाले, और एक ताऊ जी के जो लाला जी महाराज साहब के जो थे भाई थे, इनको छोड़ के अब देख लीजिए किसी कोई नामो निशान नहीं। जगदम्बा प्रसाद पड़े पंडित माता शरण जी, प्यारे लाल जी, हो सकता है वो अपना जीवन अपना उनने अचीवमेंट कर दिया। तो क्या चीज थी मेन चीज जो होती है सत्संग। चाचा जी महाराज के विसाल के बाद फिर ये क्वेश्चन हुआ, वही जो कानून कुदरत था गैप से कि किसके पास जाए। ताऊजी बाऊजी एक साथ आ गए, कुछ लोग डॉक्टर चतुर्भुज साय जी के साथ चले गए। तो जहां जहां सत्संग हुआ वो सब जगह मतलब बराबर उन्नति करती रही। जब बाबू हरनारायण जी चाचा जी की वो हुई तो इनके भी साथ यही प्रश्न था, लिहाजा वहां जयपुर में निःसत्संग और आपके जो बहुत क्लोज रिलेशन थे, जो क्लोज लोगों में से थे, कौशिक जी थे, उनकी पत्नी थी और प्रेम नारायण जी थे, ये सब लोग। और जब इनका परम पूज बाबूजी महाराज से संपर्क हुआ तो उनने इन लोगों को बाबूजी महाराज से दीक्षा दी। उससे पहले आपको कहीं जाने का ज्यादा शौक भी नहीं था। फिर धीरे धीरे लास्ट 2 ईयर्स में आपने सब सिलसिले के बुजुर्गों की समाधियों के दर्शन किए थे। यहां आए थे आप तशरीफ ला के, बाकायदे शिजरा लिया था हमसे, सबके नाम नोट किए थे, बल्कि बहराइच से आपका फोन आया कि साहब हम उनके उस पर जा रहे हैं। और लास्ट उसमें भी आपने देखा होगा अब वहां गए थे। तो कहने का मतलब है जब तक अगर आप सत्संग से अटैच हैं, किताबों में तो ये लिखा है कि एक मरते हटने के बाद 5 जन्म बीत जाते हैं, तो कहीं के हों अगर वो सत्संग है तो धीरे धीरे आपको विवेक होगा, आगे का रास्ता खुलेगा। और इसी आधार पर उन्होंने लिखा था बिन राम कृपा सो सुलभ। अब हर शख्स पहले ही दिन तो नहीं कुछ हो जाता, टाइम लेता, लेकिन जो सत्संग अटेंड कर लेता है और रेगुलर रहता है उसका जीवन डेफिनेटली सफल हो जाता है, वो कभी बेराहा नहीं हो सकता आसानी से। और यही वजह है जिसकी सत्संग आपका भी ये था कि आखिरी वक्त तक। अब दुनिया भी टेस्ट लेती है, एक दिन हम भी बैठे हुए थे, आपने परम पूज्य बाबूजी महाराज से पूछा कि भाई साहब आपकी क्या वो है, हम दीक्षा दे दें। बाबूजी ने कहा देखो भाई ऐसा है, बाबू हरनारायण जी जब आप हमसे पूछते हैं, जब आप पर किसी बुजुर्ग की इजाजत नहीं, किसके हाथ पर दीक्षा, तो ये वहम काहे को पैदा हुआ आखिरी वक्त आपको जब अब तक निकल गए। क्योंकि जब आदमी आने लगते हैं तो एक ये भी ऐसा है शैतान जो समझाता है कि ये सब तुम्हारे हो गए, काहे को तुम्हारे हो गए, ये सब ईश्वर के थे, ईश्वर ही के रहेंगे। और थैंक गॉड कि उनने उस बाबूजी की बात को बहुत तो उसके बाद किसी को दीक्षा नहीं दी। तो एक ऐसा ख्याल उठा जो खाली सत्संग, और कितने ही वो वैसे रहे हों लेकिन आखिरी वक्त तक सत्संग में कभी ऐसा नहीं हुआ। लास्ट आपने देखा होगा अक्टूबर के भंडारे में आए थे, क्योंकि स्वस्थ भी नहीं थे, चलने में आगे के दिखाई नहीं पड़ता था। और यही पहचान होती है कि ये आत्माएं जो वापस जाती हैं इनके साथ बुजुर्ग होते हैं और इन लोगों के साथ खुशी खुशी होते हैं। जो वैसे होते हैं उनके हाथ गुरु ने पकड़ा होता है, इसलिए जब वो देखता है बेराहा है तो आता तो जरूर है लेकिन मजबूरी में आता है। किसी का काम आप खुशी खुशी दुनिया में करते हैं किसी का जग दिखावे के लिए या उसके लिए, तो वही स्थिति इसमें भी बनी रहती है। तो आपने एक बड़ा अच्छा, ये प्रोफेसर राजेंद्र नाथ जी थे, इनके यहाँ ताऊजी इनका, चलो बेटे एक हमारे गुरु भाई हैं उनसे मिले आए, ये उन लोगों ने उनने ये कर रखा था, उस वक्त 100 रुपए में सेटिंग देते थे। तो गए, बातचीत हुई, हम तो इसी ख्याल से गए बड़े उससे। ताऊजी ने कहा उनसे, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं आपको पटक पटक के मारूंगा। अब हमको ये लगे कि अच्छे गुरु भाई हैं, दोनों लड़ने को तैयार हैं, तो उसकी वजह थी। हमने कहा ताऊजी ये आपके गुरु भाई थे और सब कुछ थे। उन्हें बेटे नहीं, हमें गुस्सा इसलिए आ गई थी कि हमें इनकी उसमें नहीं था कि बर्बादी पे नहीं आई थी, इस बात पे कि लालाजी महाराज के नाम को बदनाम करने, इसलिए हम टॉलरेट नहीं कर पाए थे। हमारे गुरु को उसके बाद दुए पड़ते भी हमसे कहा कि देखो बेटे अगर उधर आना जाना हो, यही 4 बाग जो बस स्टेशन है इन्हीं के पीछे उनका घर था, कि तो हमारी कह देना कि भाई श्री कृष्ण ने आपको नमस्ते कहलाई और माफी मांगी। तो बोले कि क्योंकि लाला जी महाराज साहब की बदनामी हो रही थी, इसलिए हम टॉयलेट नहीं कर पाए। तो इन्हीं का नहीं, हमने देखा जो शख्स भी, क्योंकि उस एरा से बचपन पर सबके बारे में जानते थे, सबसे कनेक्टेड रहे, तो हमने देखा जो शख्स कहीं से भी हो गया नॉट नेचुरली, वो आगे धीरे धीरे ईश्वर ने उसका रास्ता बना दिया। और जैसे नहीं हुआ वो शख्स, जरूर हमने देखा नहीं अब तक कोई शख्स ऐसा रहा हो जो सफल पाया हो। इसीलिए ऐसे लोगों से यही प्रेरणा लेनी चाहिए। ये जितनी इनने किताबें लिखी हैं ये सब उसके बाद से लिखी हैं, कि देखिए 94 साल की, यानी पूरे रामाश्रम सत्संग के पूरे परिवार में सबसे ज्यादा उम्र इनकी थी। दिखाई भी नहीं पड़ रहा, सुनाई भी नहीं पड़ रहा। हम ही से कह रहे थे कि क्यों आपके दिन्नू नहीं दिखाई पड़े, तो उनका आप कहाँ बैठे थे, वो दिन्नू के बगल में बैठे थे, यानी हम ही खड़े थे और हम ही से कह रहे थे। और उस उम्र में भी उनको आने में तकलीफ थी, फिजिकल वो थी, और उस समय भी वो सरेंद्र भी गए। तो इन लोगों से शरीर है नष्ट हो नहीं है, ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए सब, कैसे ये इनने हिम्मत की, प्रार्थना करनी चाहिए हे ईश्वर इसी तरह की हिम्मत व शक्ति हो।